ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி ஸ்ருணுயாம தேவாஹ, பத்ரம் பஷ்யே மாக்ஷபீர்ய ஜத்ராஹ, திரைரங்கைஹ துட்டுவா கும்சஸ்தனூபிஹ வ்யசேம தேவஹிதம் யதாயுஹ. ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வ்ருத்தஸ்ரவாஹ, ஸ்வஸ்தி ந பூஷா விஸ்வவேதாஹ, ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷோ அரிஷ்டநேமிஹ, ஸ்வஸ்தி நோ ப்ருஹஸ்பதிர் ததாது. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹ. ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம். நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம். சூத்ரபாஷ்யக்ருதோ வந்தே பகவந்தோ புனப்புன ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேதவிபாகினே வ்யோமவத்வ்யாப்ததேஹாய ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தயே நம. மேரே பீச்சே போல்னா நிதயே சர்வ வித்யானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் குரவே சர்வலோகானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நம. ஓம் நம பிரணவார்த்தாய சுத்த ஞானைகமூர்த்தயே நிர்மலாய பிரசாந்தாய தட்சிணாமூர்த்தயே நம. சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர் பவது மே சதா. ஓ பேஜ் நம்பர் 76 சகத்தர் பண்ண மந்திர 9 3 1 9 ஏஷ அணு ஆத்மா மில் கே சப்கோ. ஏஷ அணு ஆத்மா சேதசா வேதிதவ்ய யஸ்மின் ப்ராணஹ பஞ்சதா சம்விவேஷ ப்ராணைஶ்சித்தம் சர்வம் ஓதம் ப்ரஜானா யஸ்மின் விசுத்தே பவத்யேஷ ஆத்மா விபவத்யேஷ ஆத்மா ஏஷோரணுராத்மா சேதசா வேதிதவ்யஹ யஸ்மின் ப்ராண பஞ்சதா சம்விவேஷ. ப்ராணைஶ்சித்தம் சர்வமோதம் ப்ரஜானாம் யஸ்மின் விசுத்தே விபவத்யஷாத்மா விபவத்யஷ ஆத்மா. உஸ்கே நீச்சே ஹிந்தி பாஷானுவாத் தியா ஹை, மே படுங்கா ஆப் பி படே அப்னே தேகே அப்னி புஸ்தக் மே. யஸ் சூக்ஷ்ம ஆத்மா इस शरीर के भीतर ही चित्त से जानने योग्य है, जिसमें प्राण अपान आदि वेद से पांच प्रकार का प्राण प्रविष्ट है। इंद्रियों के सहित प्राण से प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त है, क्योंकि लोक में प्रजा के सभी अंतकरण चेतन युक्त प्रसिद्ध है। जिस चित्त के शुद्ध हो जाने पर यह आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकाशित होने लग जाता है। यस्मात् भाष्य पढ़े, यस्मात् आत्मानम् एवम् पश्यति एषः अणुः सूक्ष्मः चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः। जिस ब्रह्मात्मा की चर्चा चल रही है, आत्मा जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो आत्मा है, वो आत्मा को रिकग्नाइजिंग द सेल्फ, उसकी पहचान कैसे करना है, जानना मात्र ही कृतार्थता है। जानने के बाद कुछ करना नहीं है, बोध मात्र से कृतार्थता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता जानने मात्र से वेदन मात्रे न परम आपनोति। तो यहां श्रुति माता इस बात को बताती है, यम आत्मा जो आत्मा, एवं आत्मानम एवं पश्यति, जिस आत्मा का वो दर्शन करता है, पहचानता है, अच्छा देखता है कैसा है आत्मा। एष आत्मा अणु हो, देखो उपनिषद आत्मा के लिए शब्द इस्तेमाल करती है, अणु हो, अणु मानी पार्टिकल नहीं, एटम पार्टिकल नहीं, उससे भी जो सूक्ष्म है, क्योंकि वेरी सटल। अणु शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश में अत्यंत सूक्ष्म, वेरी वेरी सटल। आपको मैंने दो दिन पहले सूक्ष्म कई सूक्ष्मता वस्तु की कैसे निर्णित होती है उसके विषय में बताया था, जिसमें गुण अधिक उसकी स्थूलता अधिक, जिसमें गुण कम उसकी सूक्ष्मता कम, सूक्ष्मता ज्यादा, और जिसमें बिल्कुल गुण नहीं है वो अत्यंत सूक्ष्म है। पृथ्वी में पांच गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जल उससे सूक्ष्म है, उसमें चार गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस। अग्नि में तीन गुण है, वो ज्यादा व्यापक भी है जल और पृथ्वी से, और ज्यादा सूक्ष्म है, तीन गुण है, कौन से, शब्द स्पर्श रूप। और वायु में दो ही गुण है, शब्द और स्पर्श, और वो सूक्ष्म है, जल अग्नि पृथ्वी से सूक्ष्म है और व्यापक है, प्रत्येक है, नजीक भी है और नियामक भी है, और उससे भी आकाश और सूक्ष्म एक गुण है, व्यापक है, शब्द मात्र एक गुण है। आकाश को जानने वाला जो मन है वो इससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि मन को मन के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता, आकाश का ज्ञान होता है, आकाश के द्वारा मन का ज्ञान नहीं होता है। आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? जो मन को भी प्रकाशित करने वाला चैतन्य है। इसलिए उपनिषद ने अन्य जगह पे कहा है, किमु वक्तव्यम, क्या बोलना, आत्मनः सूक्ष्मत्वम् प्रत्यक्त्वम् व्यापकत्वम्। इसकी तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबसे ज्यादा व्यापक, सबसे ज्यादा नजदीक, सबका नियामक वो है सूक्ष्म। तो उपनिषद का जो गणित है सूक्ष्म शब्द के लिए वो मैंने बताया। एक बात है, आप लोग भी जानते हैं, वायु सूक्ष्म होने से सब जगह है, वायु से भी सूक्ष्म होने से आकाश उससे भी ज्यादा व्यापक, कोटि कोटि ब्रह्मांड में व्यापक है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड को समझने वाला मन उससे भी सूक्ष्म है। अभी उपनिषद कहती है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, आज का प्रवचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आत्मा सूक्ष्म है, पर पहचानना बुद्धि में है उसको, और कहीं भी आत्मा का बोध संभव नहीं है। इसलिए आप देखिए, आपने पढ़ा अभी, एष अणुहु सूक्ष्म क्या चेतसा, मिला ना, चेतसा मानी क्या, बुद्धिया, बुद्धिवृत्ति के द्वारा। खास खास आज का विषय ग्रहण करना है तो चेतसा का अर्थ है बुद्धिवृत्ति मानी अखंडाकार वृत्ति द्वारा। अ वृत्ति अ थॉट विच इज फ्री फ्रॉम डिवीजन, डिवीजन लेस थॉट। जीव ईश्वर के स्वरूप को लखाने वाली वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति से ही मूला विद्या का ध्वंस होता है और बुद्धि में ही इस आत्मा का बोध होता है। इसलिए पर बुद्धि कैसी होनी चाहिए उसका विशेषण देते हैं आगे जाके। विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः, ये तव्य प्रत्यय जहां होता है लोट, वन नीट, वन दिस सटल सेल्फ हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द माइंड अलोन। मन के द्वारा, उपनिषद में कठोपनिषद में मंत्र है, मनसा एव इदम् आप्तव्यम्, केन उपनिषद में मनसा एवं इदम् आप्तव्यम्, मन के द्वारा ही आत्मा को बुद्धि में पहचानना है। अब कैसा मन महाराज, हमारा मन तो नहीं देखता है आत्मा को। विशुद्ध ज्ञान, कल का मंत्र याद है, ज्ञान प्रसादेन पश्यति। ज्ञान प्रसाद क्या है? ये बुद्धि में सूक्ष्मता और स्वच्छता और एकाग्रता, ये तीन गुण चाहिए। बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए, तब उसके द्वारा आत्मा का दर्शन संभव है। अशुद्ध, मलयुक्त और विक्षिप्त चित्त के द्वारा आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। कल दृष्टांत दिया था, अगर पानी हिलता है तो प्रतिबिंब ग्रहण नहीं करता है, अगर आईने पे धूल लगी है तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है। ऐसे अंतःकरण में अशुद्धियां है तो दर्शन नहीं होता है। जो लोग शाम के प्रवचन में आते हैं, मैं बहुत प्रयत्न करता हूं चित्त की अशुद्धि क्या है ये विषय पे दो दिन से प्रवचन चल रहा है। आज अंतिम प्रवचन है कर्म संन्यास पे। इसमें एक बात है कि इस जन्म के नहीं कोटि कोटि जन्म के राग द्वेष हमारे अंतकरण में अव्यक्त रूप से रहते हैं। देखो सूरज का पौंक किसने खाया है? हाँ, खाया है आप लोगों ने? तत्काल लोग मुस्कुराने लगे। क्यों? ये राग है उन लोग के मन में। क्या? किसके प्रति? सूरज के पौंक। अंजो बता रखा है तो पेट मुखे पोक पौंक माती पोक थी जाए। दैट पौंक पौंक बहुत बढ़िया चीज है। इज अ रियल ग्रीन थिंग। अभी नाम लेते ही आपका मन मुस्कुरा गया, खुश हो गया। क्यों? राग है वो अव्यक्त था, अभी क्या हो गया? व्यक्त हो गया। कई चीजों के प्रति द्वेष है आपको। कई लोग छिपकली नहीं देख सकते, ये जो गिलोड़ी उसको देख के उनका दिल घबरा जाता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, अगर उसका नाम लो तो क्या होता है? द्वेष। मच्छर द्वेष, खटमल द्वेष। तो राग द्वेष अंतकरण में अव्यक्त रूप से रहते हैं, परिस्थिति को देख के व्यक्त हो जाते हैं। पर वो अगर प्रबल है तो बहुत सुख दुख देते हैं, बहुत हर्ष शोक देते हैं, व्याकुलता देते हैं। तो उसको क्या करना है? उसको शिथिल करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको कुंठित करना है, और सारी अच्छी भाषा में कहो उसको वश में लाना है। तयो हो वशम न आगच्छे। डोंट कम अंडर द स्पेल ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ऐसा जो मन है इसके द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। वो आत्मा कहां है? देखो आगे पढ़िए, पहली पंक्ति में लास्ट शब्द क्वासो। वो कहां है? जिस शुद्ध अंतकरण के द्वारा, चित्त वृत्ति के द्वारा, अखंडाकार वृत्ति द्वारा जिस आत्मा का दर्शन करना है, वो आत्मा कहां है? यस्मिन शरीरे प्राणः वायुः पञ्चदा प्राणापानादि भेदेन संविवेश सम्यक् प्रविष्टः तस्मिन्नेव शरीरे हृदये चेतसा ज्ञेयः इत्यर्थः। आपका जो शरीर है मुझे मालूम है बहुत तकलीफ देता है। नैष्कर्म्य सिद्धि में सुरेश्वराचार्य महाराज कहते हैं ये देह दुख का उपादान कारण है। आपके सब दुख का कारण आखिर कौन होता है? देह ही है। सत्कर्म अशुभ कर्म किससे होता है? शरीर से होता है। मन से पाप कर्म करो उसका पाप पुण्य नहीं लगता है, अशुभ विचार आए उसका पाप पुण्य नहीं लगता है, करोगे तब होगा। अगर ये मन में आए कि इनका धंधा चौपट हो जाए, उसे कुछ पाप नहीं होता है। पर जब उसकी चौपट करने के लिए कुछ कर्म करो तो पाप पुण्य बन जाता है। ये देह जो है, मनुष्य का देह हो कि सिंह का देह हो, वो आखिर क्या करता है? हर हमेश तकलीफ ही देता है। पर मनुष्य देह में जब ये मन आता है, सूक्ष्म शरीर आता है तो उसमें एक विशेषता प्रकट होती है। वो विशेषता क्या है? उसको अपने आत्मा के विषय में सभानता आती है, बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ऑफ द होल वर्ल्ड ऑल्सो। जगत के विषय में सभानता प्राणियों में भी है। गैया जानती है कि कहां घास मिलेगा, मच्छर जानता है उनको भोजन कहां मिलेगा, प्रेमपुरी में मिलेगा, वो भी सुबह 7 बजे, वो जानता है, ब्लड डोनेशन ड्राइव करेगा, उसको मालूम है कभी आने का। जगत का ज्ञान मच्छर में भी है, पर एक त्रुटि है और शरीरों में, स्व प्रत्यय का भान उनमें नहीं है। हमारी विशेषता क्या है शरीर की? सेल्फ कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। अब देखो, बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, स्वभानता होने के कारण अपने प्रति कई प्रकार के ख्याल पैदा होते हैं, मान्यता पैदा होती है कि मैं जीव हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं छोटा आदमी हूं, मैं असुंदर हूं। ये सब प्रश्न गैया में नहीं है, सिंह में भी नहीं है। सिंह कभी आईने में देखता नहीं कि मैं कैसा दिखता हूं, पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों आंख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने के बाद भी आईने में देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं, वो देखते जरूर है। सेल्फ ओपिनियन, अपने विषय में कितने अभिप्राय है, बींग सेल्फ कॉन्शियस। और ये जितने भी ख्याल अपने आत्मा के विषय में है वो कोई भी स्वीकार्य नहीं है। मैं मरने वाला हूं, उससे बचने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता हूं, स्ट्रगल, और कुछ भी करो मृत्यु टलता नहीं है। ये जो भय बैठा है, और उपनिषद का कहना है कि कभी मृत्यु तुम्हारी हुई नहीं, जन्म हुआ नहीं, ये ज्ञान नहीं है। तो ऐसा मन जिसमें स्वप्रत्यय की सभानता है, मनुष्य शरीर में जो है, इस मन की विशेषता है कि इसमें आत्मज्ञान हो सकता है, इसमें ईश्वर का ज्ञान हो सकता है, इसमें अपने स्वरूप की अविद्या को नाश कर सकते हैं, इसमें मुक्ति का सामर्थ्य है। अभी एक बात कही जाती है, सामर्थ्य होने पर भी उसका उपयोग न करे उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अगर इस बैंक में मैं रखता तो 10% अगर वो बैंक हमको ब्याज देती है और हमने 8% पे रखा तो 2% का नुकसान हुआ, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहते हैं उसको। तो मनुष्य शरीर में उपनिषद स्वयं कहती है महति विनष्टि, अगर इस शरीर में आके ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, महतो विनष्टि यदि चेतना, अगर आपने इस आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इफ यू डोंट गेट द इन्फिनिटी, लॉस इज इन्फिनिट। अभी इतना कह के यहां उपनिषद ये बात ठसाना चाहती है कि मनुष्य शरीर में एक कैसा शरीर है, इसका वर्णन करती है। अभी देख के पढ़िए, यस्मिन शरीरे, जिस शरीर में प्राण वायु हो, ये बाहर जो हवा है वो जब हमारे नासिका के द्वारा भीतर जाती है तो उसकी संख्या क्या हो जाती है, प्राण, मेरा प्राण है। प्राण 5 प्रकार से बनते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। जो सबको भीतर ले उसको कहते हैं प्राण, जो शरीर में आए हुई चीजों को बाहर फेंके। आखिर वायु को भी बाहर फेंकते हैं, पानी को भी बाहर फेंकते हैं, भोजन को भी बाहर फेंकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपान, इवैक्यूशन सिस्टम। और प्राण मानी रेस्पिरेशन, व्यान मानी सर्कुलेशन, पूरे शरीर में जो बीपी आपका है वो व्यान के कारण है। समान समी करोती, भोजन को जो पचाता है, आपने सुबह उठ के पोहा खाया और भगवान को क्या करना पड़ता है? उसका खून बनाना पड़ता है, बड़ा काम है। प्राण वायु कौन वायु कहता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा, वही पचाता है प्राण बन के। और उदान वायु का काम है आपके जीव को इस शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाना। ये बाहर का वायु अंदर जाने पे पांच नाम धारण करता है, इसको कहते हैं लाइफ फोर्स। प्राण माने लाइफ फोर्स। पंचदा प्राण अपानादि भेदेन, इनका प्राण अपान इत्यादि नाम से पांच प्रकार के हो गए। उन्होंने क्या किया है? संविवेश, सम्यक प्रविष्ट, अच्छी तरह से प्रवेश हुआ है। देखो बाहर का ऑक्सीजन शरीर में जाके पूरे शरीर के एक 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 कोश में व्यापक हो जाता है। वायु देखो बाहर से अंदर आके फेफड़ा के द्वारा, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में क्या हो जाता है? ओतप्रोत हो जाता है। भोजन के द्वारा ओतप्रोत हो जाता है। ये पांच वायु पूरे शरीर में है, ये कहते हैं सम्यक प्रविष्ट तस्मिन्नेव शरीरे। और इस शरीर में जो बुद्धि है, हृदय चेतसाग्नेय, जिस शरीर में पांच प्राण प्रविष्ट हुआ है, उस शरीर के भीतर जो मन है, उस मन रूप मन के द्वारा इस परमात्मा को पहचानना है। यू टू रिकग्नाइज बाय द माइंड।